Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanand Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
कई लोग पूछते हैं महाराज मन नहीं लगता, आए तो मन नहीं लगता तो तुम तो लगो हा? जब तुम्हारा मन नहीं लगता है तो तुम तो लगे रहो, मन रन लग रहे। जैसे मान लो आपको काशी जाना है, यहां से रेल पे बैठ गए महानगरी, तो फिर तब तक काशी काशी थोड़ी रटते रहोगे, वो तो रेल पहुंचा ही देगी वहां तक। ऐसे भगवान का नाम वहां पहुंचा ही देगा लक्ष्य तक, इसलिए तुम तो लगे रहो। और मन लगे चाहे न लगे कोई बात नहीं, लगे तो बहुत अच्छा, न लगे तो भी रटे रहो, भगवान के नाम में सामर्थ्य। परमात्मा कैसा है ये आपने सुना कि उसमें जब निष्ठा बन जाती है तो भगवान का स्वरूप में न बुद्धि न मन न इंद्रियां न देह, क्यों, इनसे तो प्रकाशित हो रही ना। तो एक नेति का वाक्य है, परमात्मा का वर्णन अन्वय और व्यतिरेक से करते हैं। व्यतिरेक माने नहीं नहीं कहके, नहीं नहीं कैसे, जैसे मान लो लाल रंग है तो आप क्या कहेंगे, लाल रंग को सिद्ध करो लाल रंग है, तो बोले लाल रंग को सिद्ध ही नहीं कर सकते जब तक ना नहीं कहोगे। सफेद दिखाओगे तो कहे सफेद है नहीं, आ तो नीला है तो नीला भी नहीं है, ऐसे पीला भी है पीला भी नहीं है। आप कहते चले गए, अंत में लाल ही रंग बच रहा, बोले तो ये तो है। तो जब और सब रंग तो उतने ही है, और सबका निषेध कर चुके तो वही रह गया, और उसका निषेध कर नहीं सकते, ये नहीं कह सकते लाल रंग नहीं हो तो लाल दिखता है। इसी प्रकार से मैं का निषेध नहीं कर सकते, शब्दोपि बोधक निषेध तयात्मूल मर्थोक्त माह यदृते न निषेध सिद्धि। श्रीमद् भागवत कह रहा है कि देखो भाई, जिसकी निषेध सिद्धि न हो वो केवल मैं है, जिसको कभी मना ना किया जा सके वो केवल मैं है। तो देह नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, नहीं नहीं कहते जाओ, अब फिर अंत में कह दो मैं नहीं हूं, ऐसा कह ही नहीं सकते। तो जिसकी निषेध सिद्धि ना हो सके, जिसको इनकारा ना किया जा सके, वही तत्व परम तत्व है, मैं वह तत्व हूं। मैं प्रकाशक हूं न कि प्रकाश हूं, न भूमि रापो न नलो न वायु हो। देखो न मैं भूमि हूं, क्यों, पहले बताया गया था कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, अब पंच महाभूत बता रहे हैं, पंच महाभूत पंच कर्मेंद्र, ये लय प्रक्रिया से बात समझ में आ जाती जल्दी। लय जब करते हो तो शांत बैठ गए और धीरे से पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अव्यक्त में, अव्यक्त पृथ्वी में, माने अव्यक्त अपनी प्रकृति में मिल गया, प्रकृति ईश्वर में मिल गया, ये लय प्रक्रिया है। तो लय प्रक्रिया के द्वारा ही बता रहे हैं कि ये जो जिसको तुमने बहुत बड़ा मान रखा है, हजारों अगणित तारे हैं, सूर्य है, चंद्र है, इतना बड़ा विशाल पृथ्वी, बोले वो मुझ में ही तो प्रकाशित है, तो मैं भूमि कैसे हो सकता, तो भूमि नहीं तो जल हो गए, बोले ना आपो जल भी नहीं। अच्छा तो कहिए वायु हो, अंबर आकाश हो, बोले ना हम अंबर हैं आकाश है ना वायु है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब आ गया, क्योंकि बन ही अग्नि का आ गया। अब वो कहते न भूमि रापो न ही वन निरस्ती, न अग्नि न अनिल वायु और न अंबर आकाश, ये क्या मतलब, ये प्रतीत हो रहे हैं और आप कहते हो नहीं है, तो प्रतीत तो स्वप्न में भी होता है। प्रतीत होने वाली चीज सत्य होए ये बात नहीं है, प्रतीत तो होता है। प्रतीत माने प्रतिपूर्वक इणगत धातु है, इसका अर्थ हुआ कि मेरे आत्मा का प्रतिबिंब ही दिखाई देता है, मैं ही तो दिख रहा हूं शीशा में। शीशा में जो मुंह देख रहे हो और देख के बड़े खुश होते हैं, हमने देखा हाथ धोने वाले बात बेसन पे जाएंगे तो वो तो आधा मिनट में धुल जाता है, उसमें क्या लगता, लेकिन मुंह को वो ऐसे करके बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके उसको देखते रहते हैं, उसमें देर लग जाती है न, मुंह देखने में कितनी देर लगे, देख लो कि हाड़ मांस का ही बना है, सोने चांदी का नहीं है, या जो देखते हो भाई आप लोग, महिमा बंबई की अलग है। कई बार शीशा देखा जाता है, एक छुरी ऐसी रखते हैं वो पैंट की जेब में, वो कंगा है, तो उससे जल्दी जल्दी बाल संभाल लिए, हर मिनट पे कितना संभालो और कितना जाओ, लेकिन वो तो है नाशवान वस्तु, ये बात ध्यान में नहीं आती है। मट्टी पानी आग हवा का बना हुआ है, इसलिए कहा प्रात स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्त्वम् सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरीयम् यत् स्वप्न जागृत सुसुप्तिम् अवहित नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूत संघा। ये जो पंच तन मात्राएं और पंच तन मात्राओं से बने भूत, ये हम नहीं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच तन्मात्राएं हैं और इन तन्मात्राओं का लय प्रक्रिया की जाती है। माने जैसे पृथ्वी में पांचों हैं, शब्द भी है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, तो इस पांचों इसमें लय हो जाएंगे और फिर जिसका जौन है वो मिलता जाएगा और लय होता जाएगा। अंत में लय प्रक्रिया के साथ जब आप देखेंगे तो आप ही शेष रह जाते। इसलिए कहा गया भाई ये आप रोज दोहराते हो, न भूमि रापो न वन निरस्ती, थोड़ा थोड़ा फलक है, तब फिर आप क्या हैं? एवं विदित्वा, ये बात समझ लो, जान लो, और जो जान गया है सो इत्वा प्रत्यय है। यहां माने जैसे गत्वा बनता है जानकर जाकर, तो जब पहले जान लिया तब, जब ये बात समझ ली कि देखो मैं पंच महाभूत नहीं हूं, पंच तन्मात्राएं नहीं हूं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नहीं हूं, इनका प्रकाशक मैं चेतन आत्मा हूं, इस प्रकार का एवं विदित्वा बताया। यह बात जानकर, जब जान लोगे तो क्या हो जाएगा? बोले तब मैं अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। परमात्म स्वरूप मैं कैसे स्थित हो जाओगे? बोले अपनी जो आत्मा है ना, साक्षात परोक्ष आत्मा, इसी आत्मा के स्वरूप में परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। अच्छा, परमात्मा का अनुभव आत्मा के स्वरूप में होने लगेगा? कहा भाई, परमात्मा का आत्मा के स्वरूप में अनुभव होने लगेगा। अब जैसे अभी आपने सुना कि सूर्य प्रकाश तो करता है लेकिन स्वयं किसी पर प्रभाव नहीं करता, चाहे उसमें सूर्य के प्रकाश में भागवत पढ़ो चाहे जुआ खेलो, सूर्य का कोई प्रभाव नहीं, सूर्य अप्रभावित रहता है। ऐसे ही चाहे पुण्य कर्म करो चाहे पाप कर्म करो, कुछो कर्म करो, इंद्रियां करेंगी। इसका अर्थ ये न लगा लेना कि आज से हैं चलो तो फिर का पुण्य करें तो पाप ही करना शुरू कर दें। ये बात बता रही है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा, जो आत्मनिष्ठ हो जाता है, स्वरूप में अपना स्थित हो जाता है, उसकी ये अवस्था हो जाती है, उसका सहज हो जाता है। ये बात नहीं कि उसको प्रयास करना पड़े, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसको अपने आप सहज ये ज्ञान हो जाता है और प्रपंच से वैराग हो जाता है। वैराग माने घृणा नहीं है, बोले छुओ नहीं या नंगे रहने लगो या भोजन बंद कर दो, ये सब कुछ नहीं है। या सुई घोंचो और शरीर में पता न लगे, पत्थर नहीं हो जाएगा। वो सब प्रक्रिया ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन आत्मनिष्ठ व्यक्ति की पहचान ये हो जाती है, उसको प्रपंच में कोई मूल्य नहीं रहता है। असल में जिन वस्तुओं को आपने बहुत मूल्य कर दिया है ना, इसीलिए बार बार मन जाता है, और इसकी अगर उपेक्षा हो जाए, बहुत अवमूलन कर दो, बहुत मूल्य न दो, तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप अपने घर से चले, सत्संग भवन की ओर चले और यहां आए, यहां रास्ते में आपको बहुत सी बीड़ी सिगरेट शराब की दुकानें मिली, लेकिन आपको उसका कोई मूल्य नहीं है ना। इसी को वैराग कहते हैं। किसी पदार्थ की बहुत महत्वाकांक्षा न हो, बहुत उसको महत्व न दो, तो जब आप उसका महत्व नहीं देंगे तो वो उसे तटस्थ रह जाएगी। ये बात समझने की है। प्रपंच मात्र मिथ्या है, ये बात तो सबको मालूम पड़ जाता है, प्रयोगशाला से, स्वप्न से, क्योंकि स्वप्न में तमाम देखा और जो जगे तो अरे कुछ नहीं था, सब हम ही थे केवल। तो ऐसे ही जागृत अवस्था में भी जो प्रपंच देख रहे हो, जिस प्रपंच में आप घूम रहे हो, वह प्रपंच मिथ्या 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 कहने से नहीं काम चलता। एक बार मिथ्या मालूम पड़ जाए, उस वस्तु का मूल्य न दो, तो आप कहेंगे वाह, हम घर का मूल्य दें, पत्नी का मूल्य दें, बेटा का मूल्य दें, का बाबा जी बन जाए क्या? अरे धोखे में बाबा न बन जाना। माने जिस व्यवहार में, जिस कार में आप रह रहे हो, उसी में रहते हुए भी आत्मनिष्ठ व्यक्ति जो अपने आत्मा में विराजमान है, आत्मस्थ है, उसको प्रपंच की कोई वस्तु मूल्यवान नहीं लगती। जैसे स्वप्न में आप देखते हो सब दुनिया भर की, और दुनिया की चीजें देखने के पश्चात अपने भी दिखते हो, फिर जब जगे अरे वो तो स्वप्न था, तो उसका कोई मूल्य नहीं देते हो। तो पदार्थों का अवमूलन हो जाए, बस इतना ही है निश्चय, और है निश्चय कोई नहीं है। एवं विदित्वा परमात्म रूपम, एक परमात्मा का रूप इस प्रकार से जब समझ लिया जाता है, तो गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम। एक गुहाशय क्यों दिया? अद्वितीय परमात्मा एक है। देखो एक कहते एक, तो एक और एक दो हो जाता, या एक और एक ग्यारह हो जाता, और अद्वितीय 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 कितने बार कहो अद्वितीय रहेगा। परमात्म रूपम कैसा है? परमात्म रूप बोले अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है भाई? जगत भी तो दिख रहा है। कहा जगत दिख रहा है, लेकिन अध्यस्त रूप में दिख रहा है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई दिया ना, तो इसका मतलब रस्सी तो कहीं है ना, तब सांप दिखा। निर्धिष्ठान ब्रह्म कभी नहीं होता, याद रख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अधिष्ठान जब होगा तब ब्रह्म होगा, और जब आपने रस्सी नहीं देखी तो सांप का ब्रह्म कैसे होगा? तो सांप तीनों कालों में नहीं है, ये बात जब लाइट से देख लोगे, रस्सी का ज्ञान हो जाएगा, तो अपने आप उसमें कोई कहने भी आवे कि अरे जी ये तो सांप दिख रहा है, तो कहेंगे अरे जी तुमने ठीक प्रकाश में नहीं देखा, सांप दे, सांप नहीं है। तो ऐसे ही प्रपंच का मिथ्यात्व तो अधिष्ठान ज्ञान से अपने आप हो जाएगा, उसका अवमूलन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ एवं विदित्वा। जब इस प्रकार से जान जाओगे, समझ में आ जाएगी कि अरे वो तो गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम, अद्वितीय आत्म तत्व तो हमारे हृदय में ही है। हृदय माने ये न समझ लेना जहां आर्किल वेंट्रिकल रक्त चल रहे हैं, एक बड़ा सुंदर म्यूजिक हो रहा था, बड़ा सब गर्दन हिला हिला के सुन रहे थे बड़े ध्यान से। बाद में एक सज्जन ने कहा कि ये जो तुम वीणा बजा रहे हो बंशी, ये बहुत बढ़िया सुरीली थी, कौन राग है? बोले ये आशावरी है। अच्छा, ये वीणा में ही आशावरी के? हाँ, और सांस के रहे होंगे। तो जब वो बाजा बज गया और आराम से बैठ गए तो धीरे से वीणा उन्होंने उठाई और लेबोरेटरी में ले गए, उसको तोड़ फाड़ के सब समाप्त कर दिया। कहा इसमें तो आशावरी निकल ही नहीं कहीं। पूरा जब तोड़ डाला, संगीतक से पूछा कि भैया इसमें तो तुमने कहा था आशावरी, इसमें तो निकली नहीं, हमने तो इसको तोड़ फोड़ डाला। ऐसे आप किसी डॉक्टर से पूछोगे आर्किल वेंट्रिकल में हमें बताया गुहा से निष्कलम अद्वितीय अद्वितीय आत्मा बैठा है, तो इसका अर्थ है हृदय तो दया करुणा उदारता शील स्वभाव का केंद्र है। ये हृदय भक्ति है, प्रेम है, इसमें प्रेम का केंद्र है, इसलिए उसको कह दिया जाता है गुफा में कहीं बाहर भटकने ना जाए, बाहर भटकने के रोकने के लिए कह दिया जाता है। नहीं तो उसकी तरह वीणा की तरह तुम ही चीड़ फाड़ करके दिखा लो। और डॉक्टर लोग तो हार्ट को निकाल के कटोरी में रख देते हैं और कहते हैं वहां बताओ गुहा स्वयं निष्कलम अद्वितीयम है, तो ये बात नहीं। तो कहते हैं कि समस्त साक्ष्यम सद सद विहीनम, आपको उदाहरण दिया था सद और असद का कि दो विरोधी तत्व ही वर्णन कर पाते हैं। तो आप देखेंगे सर्वेंद्री गुणाभासम सर्वेंद्री विवर्जितम, जैसे दो रबड़ का एक गेंद का उदाहरण दिया था, रबड़ की गेंद है और उसके दो छोर होते हैं आभा मान लो सादा, तो अभी तो दो छोर दिखाई दे रहे हैं, रबड़ की दृष्टि से अगर देखो तो कुछ नहीं होगा। भगवान कहता है अमृतंच मृत्युंश सत्सत चाह अर्जुन, अब फिर कहते अनादिमत परब्रह्म न सत तन्ना सदुच्यते। क्यों? बोले बात यह है कि अधिष्ठान की दृष्टि से मेरे दृष्टि में तो कुछ आई नहीं, मतस्थान सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितम। देखो मजे की बात, और फिर कहते हैं मतस्थान सर्वभूतानि, नवे अध्याय के चौथा पांचवा देखना। तो इसमें बड़ा मजे की बात है, पहले तो कह देते हैं कि मेरे में संपूर्ण भूत प्राणी हैं, और फिर कहते मेरे में कुछ नहीं है। एक बार गंगा की यात्रा कर रहे थे, गंगा जी बहुत बाढ़ में थी, सो नाव पे बैठे, और नाव पे बैठे तो एक नाव जरा आगे चली गई एक पीछे चली गई, तो कहा अरे उतनी दूर हो गया, वो तो बहुत भेद हो गया। अच्छा गंगा जी से पूछो, तो मैंने कहा जरा गंगा जी से पूछो कि कहां भेद है। इसी तरह से रबड़ की दृष्टि में गेंद के दो भेद नहीं है, अब इसे भेद हैं। तो जिनको जगत सत्य मालूम पड़ रहा है उनके लिए बता दिया भाई जगत है, भेद वाला है, प्रपंच है, और है इसका निर्माता परमात्मा है। कहे बोले परमाणु बता देते, प्रकृति बता देते, तो प्रकृति और परमाणुओं को काटने के लिए वजह तो है, जैसे लोहा लोहे को काटता है वजह से कारण मान लिया गया, कारण नहीं है परमात्मा, न कारण है न कार्य है, मान लिया है। और इसलिए मान लिया है कि जिससे अद्वितीयता सिद्ध हो जाए कि परमात्मा ही कारण कार्य है, परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, इसी बात को निष्कलम अद्वितीयम से कहा गया। वो पूर्ण है, निष्कल माने परिपूर्ण और अद्वितीय है, वो हृदय में ही विराजमान है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। एवं विदित्वा परमात्म रूपम, ये बात समझ करके और गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम समस्त साक्ष्यम सदसद विहीनम प्रयाति शुद्धम परमार्थ रूपम। ये परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए क्या चाहिए? जैसे प्रेम इन आंखों से नहीं दिखता, प्रेम मन की चीज है, हृदय की चीज है, वो प्रेम ऐसी वस्तु नहीं है कि जो आंखों से दिखाई दे जाए। इसी प्रकार से परमात्मा जो प्रकाशक है, जो संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण मन, अब देखो सबका काटिंग कर दिया, कर्मेंद्रियों का भी, ज्ञानेंद्रियों का भी, पंच महाभूतों का भी, पंच तन्मात्राओं का भी, सबका, मन बुद्धि चित्त अहंकार जितना भी था, सब प्रकाश्य हैं और ये परमात्मा प्रकाशक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए बात बताई। और आपने ये भी सुना कि सब असल में मन में प्रपंच आता है, और मन जब आत्मनिष्ठ हो जाता है, मन अपने आश्रय में लय हो जाता है, उस समय वो मन फुरफुर नहीं करता है और प्रपंच दिखाई नहीं देता। तो आत्मज्ञानी की निष्ठा का वर्णन ये है ना, आप समझो कि ये क्यों कह दिया ये पंच महाभूत नहीं है। जगत में जिन जिनको ये निश्चय हो जाता है कि मेरी साक्षात परोक्ष आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, उनका ये प्रतिपादन है। तो संपूर्ण कैवल्य उपनिषद को ये प्रथम खंड हुआ आपका। अब द्वितीय खंड में फलश्रुति का वर्णन है। तो प्रथम खंड में आपको याद होगा कि आश्रायन जी ने ब्रह्मा जी से जाके पूछा कि महाराज वो परात्पर पुरुष हमें बताइए। आइए, परात्पर पुरुष ही वर्णन आया उपसंहार में, आपने देखा उसी का वर्णन है। तो उसी को उन्होंने कहा था कि हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल तुम्हारी सही है, लेकिन श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवेही, श्रद्धा के द्वारा, भक्ति प्रेम के द्वारा और ध्यान योग से इस बात को समझाओ। किस बात को? परात परम पुरुषम उपैति विद्वान। उस परात्पर परब्रह्म को विद्वान अपनी आत्मा के रूप में कैसे पहचान लेते हैं, क्योंकि आत्मा ही साक्षात अपरोक्ष अहम के रूप में है, तो उसको पहचान कैसे लेते हैं? उसको पहचान को बताया एवं विदित्वा, ये वहां की बात यहां कही है। ऐसे समझ करके, जो ऐसे जान जाएगा गुरु जी के द्वारा, वो शिष्य समझदार हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा वेदैर अनेकैर अहमेव वेद्य, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, अर्थात तो हम ही गुरु जी हैं, हम ही तो समझाने वाले, निश्चय करने वाले और हम ही समझने वाले। वेदांत कृत माने वेदांत का निश्चय। वेदांत का निश्चय क्या है? मैं ही आत्मा हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं, तो मैं ही स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद अपरमेय अनादि अनंत आत्मा, संपूर्ण प्रपंच के अधिष्ठान ब्रह्म से एक हैं। तो संपूर्ण प्रपंच का जो अधिष्ठान ब्रह्म परोक्ष है, उस परोक्ष के साथ एकता करने के कारण एवं विद्वान वहां आया, यहां आया एवं विदित्वा। इस बात को जान करके ज्ञानी बन जाता है, और ज्ञान निष्ठ होने पर ये मन अपने आश्रय में लय हो जाता है, इसलिए कुछ पता ही नहीं चलता। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय।
नारायण 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 नारायण। हम सब मिलकर स्वामी जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं। अब शांति पाठ होगा।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।